ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಜಯ ಸೋಭರ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಜಯ ಸೋಭರ
ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಜಯ
ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 5 ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ
ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ
ಪೀತರಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತೇರಣ್ಯಂ
ಪೀತರಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತೇರಣ್ಯಂ
ಮಾತು ಪ್ರಿಯ ಚಿಕಿರ್ಷಯಾ
ಮಾತು ಪ್ರಿಯ ಚಿಕಿರ್ಷಯಾ
ತಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂದು ಸರೆ ವಾಸಿ
ತಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂದು ಸರೆ ವಾಸಿ
ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಕಿಲ
ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಕಿಲ
ತಮಾಸೀನ ಕರ್ಮಾಣಂ
ನಮ ಕರ್ಮಾಣಂ
ತತ್ವಮಾರ್ಗಾಗ್ರದರ್ಶನಂ
ತತ್ವಮಾರ್ಗಾಗ್ರದರ್ಶನಂ
ಸ್ವಸುತಂ ದೇವಹೂತ್ಯಾಹ
ಸ್ವಸುತಂ ದೇವಹೂತ್ಯಾಮ
ದಾತು ಸಂಸ್ಮರತಿ ವಚ
ದಾತು ಸಂಸ್ಮರತಿ ವಚ
ದೇವಹುತಿ ವಾಚ
ದೇವಹುತಿ ವಾಚ
ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾ ನಿತರಾಂ ಭೂಮನ್
ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾ ನಿತರಾಂ ಭೂಮನ್
ಸದೀಂದ್ರಿಯ ತರ್ಷಣಾ
ಸದೀಂದ್ರಿಯ ತರ್ दर्शना
येन संभाव्यमानेन
येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तमः प्रभो
प्रपन्नान्धं तमः प्रभो
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य
दुष्परस्याध्यपारगम्
पुष्पारस्याध्यपारगम्
सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते
सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते
लब्धं मे त्वदनुग्रहा
लब्धं मे त्वदनुग्रहा
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है, श्रीमद् भागवत जो भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण है, ऐसे भागवत का श्रवण हम प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में कर रहे हैं। ज्ञान का अर्थ होता है, श्री प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं, कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फेनोमेनल वर्ल्ड द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बर्थ ऑफ देम। पूर्ण ज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें इस भौतिक जगत के विषय में कुछ ज्ञान हो, इस भौतिक जगत के पीछे परमात्मा और आत्मा का जो ज्ञान हो, भौतिक जगत आत्मा और परमात्मा ये तीनों के विषय में जब कोई जान लेता है तब उसे पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। और ऐसा पूर्ण ज्ञान कंप्लीट नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द डिवोटी ऑफ कृष्णा। ऐसा पूर्ण ज्ञान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त से ही प्राप्त हो सकता है। कभी कभी संसार में देखा जाता है, कई जगहों पर ज्ञान बांटा जाता है, दिया जाता है, परंतु ज्ञान मात्र किसी शुद्ध भक्त के मुख से ही ग्रहण करना चाहिए। जो बोनाफाइड वैष्णव है, बोनाफाइड गुरु है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, उनके मुख से ज्ञान प्राप्त करने से वास्तव में हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और विज्ञान भी प्राप्त होता है। और संसार के किसी ऐरे गहरे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करोगे, पहले तो वो ज्ञान है ही नहीं, और थोड़ी बहुत ज्ञान की बात हो भी जाए तब वह अपूर्ण ज्ञान होगा, और अपूर्ण ज्ञान विनाश को निमंत्रण देता है। श्री प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे भगवत कथा शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। कभी कभी यही भागवत कथा अन्य लोग करते हैं जो भक्त नहीं है, जो चंद पैसे के लोभ में आकर भागवत को बेचने के लिए बैठे हैं, ऐसे लोगों के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। यद्यपि वो भागवत ही बोल रहे हैं, परंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे दूध, दूध में बहुत गुण है, बलवर्धक है, परंतु उस दूध को स्पर्श सर्प स्पर्श कर ले, वह गुणवान होने के बाद भी वह दूध पिया जाए तो व्यक्ति मर सकता है। ऐसे भागवत तो भागवत ही है, परंतु किसी अभक्त के द्वारा सुनने से जीवन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए मात्र शुद्ध भक्त से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें भगवान से जोड़ता है। तो परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर शुद्ध भक्त के मुख से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं कोई शुद्ध नहीं हूं, आप लोग सोचेंगे कि ये शुद्ध बैठ गए हैं, मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी ने अपने परपोट में जो लिखा है, हम केवल उसे दोहरा रहे हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। हो सकता है हम पापी हैं, हमें बहुत सारे दोष हैं, परंतु हम जो बोल रहे हैं किसी शुद्ध वैष्णव आचार्यों की बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे हमारा काम पोस्टमैन का है। पोस्टमैन क्या करता है? किसी के घर से पत्र को लेकर, लेटर को लेकर अन्य किसी के घर पर पहुंचाता है, और उस पोस्टमैन के कार्य से वह एज इट इज लेटर वहां पर पहुंच जाता है। तो हो सकता है पोस्टमैन को कोई रोग हो, बीमारी हो, कुछ दोष हो, परंतु कुछ भी हो, वह लेटर तो एज इट इज वहां पर पहुंच जाता है। ऐसे हो सकता है हम में कुछ दोष हो, कुछ पाप हो, कुछ दुर्गुण हो, परंतु जिनकी हम बात बोल रहे हैं, जिन्होंने ये भागवत का ज्ञान दिया है, वह शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। तो परम सौभाग्य है कि शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने भागवत को जिस प्रकार से समझा है और जिस प्रकार से समझाया है, वह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। ये नहीं है कि प्रभुपाद जी की बातों का एज इट इज यहाँ पर हम बोल सके। कुछ कलयुग का प्रभाव और चमड़े की जीभ कभी फिसल जाती है, तो आप सब भक्त हमें क्षमा करेंगे, दोष तो है, परंतु आप परम हंस हो, जानते ना हंस का स्वभाव। हंस को पानी और दूध दोनों घोल कर दिया जाए तो हंस में एक गुण होता है कि वह दूध दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। हमारे घर पर दूध वाला दूध देने के लिए आता है तो मैं अक्सर कहता हूं तेरा दूध तो हंस ही पी सकता है, पानी वाला दूध है। लेकिन हंस का एक गुण है, दूध को पीता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे आप सब श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो और हमसे तो कोटि गुना भक्ति में आगे हो। ये तो अब एक स्वभाव बन चुका है बोलने का, तो बोलते रहते हैं, और सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े बड़े भक्त सुनते भी हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मेरी कोवे जैसी वाणी, न तो कोई भाव है न भाषा, माया का प्रभाव, लेकिन फिर भी आप इतनी श्रद्धा से उत्कंठा से श्रवण करने के लिए आते हो। वास्तव में आपके हृदय में कृष्ण भक्ति है, आपका कृष्ण के प्रति अनुराग है, कुछ प्रेम है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर आप यहां तक आ रहे हो। मैं यह भी जानता हूं कुछ लोग अपने काम धंधे को छोड़कर आए हैं, लेकिन इसी को भक्ति कहते हैं, भगवान के लिए कुछ छोड़ना, सार्थक कर दिया आप लोगों ने। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम कथा को आगे बढ़ाए। गत सत्र में हमने श्रवण किया था शौनक ऋषि सुध गोस्वामी को जिज्ञासा किए, आप भगवान कपिल देव की कथा सुनाई, और उनमें भी भगवान कपिल देव ने जो अपनी मां को शिक्षा प्रदान की वह शिक्षा सुनाई। शौनक जी की जिज्ञासा, सुध गोस्वामी प्रसन्न हुए और सुध गोस्वामी कहते हैं द्वैपायन सखेत्वेवम मैत्रेयो भगवंस्तथा। हे शौनक जी, मैं तुम्हें भगवान कपिल की कथा सुना रहा हूं, और आपने जो जिज्ञासा की, आपने जो प्रश्न पूछा, ऐसा ही प्रश्न हरिद्वार में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को पूछा था। और वो मैत्रेय मुनि कौन थे? द्वैपायन सखा। वो मैत्रेय जी का इंट्रोडक्शन सुध गोस्वामी कैसे दे रहे हैं? आपके पास श्लोक है, चौथे श्लोक का प्रथम शब्द ही है द्वेपायन सखा। मैत्री जी कौन है? द्वेपायन के सखा। द्वेपायन का अर्थ क्या होता है? द्वीप अयन, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ है। द्वीप का अर्थ जानते हो? आइलैंड। समंदर होता है, उसमें द्वीप होते हैं, नदी में भी द्वीप होते हैं। पराशर ऋषि और सत्यवती के द्वारा इनका जन्म यमुना के द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनका नाम द्वैपायन है। और यमुना के किनारे हुआ, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। और आगे चलकर इन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। तो कहते हैं कि वो मैत्री मुनि वेद व्यास जी के सखा थे। देखिए, किसी का इंट्रोडक्शन देना हो तो उनका मित्र कौन है ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि वह कैसा है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके मित्रों से होती है। यहां पर कहते हैं मैत्रेयो द्वैपायन सखा। मैत्रेय ऋषि वेदव्यास जी के सखा थे। इस संसार में भी मान लो किसी के बारे में जानना हो कि व्यक्ति कैसा है, क्या है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनका मित्र कौन है। बियर बार में जाने वाला मित्र है, समझ में आ जाएगा वो कैसा है। गुटखा खाने वाला है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है, संग का बहुत प्रभाव होता है। मैं अक्सर कहता हूं किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार दो चीज के ऊपर टिका है, संस्कार और संग। माता पिता के कैसे संस्कार है, जैसे संस्कार होता है वैसे वैसा जीवन होता है उस बालक। और संस्कार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संग। आप घर पर अपने बच्चों को कितना भी अच्छा संस्कार दो, परंतु स्कूल और कॉलेज में गलत संगति हो गई तो वो बिगड़ सकते हैं। और हम तो जानते हैं, हम खुद मुंबई में सबसे बड़ी और बिगड़ेल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, मिठीबाई कॉलेज में। बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। घर पे क्या कुछ कहकर आते हैं, घर पे साधु बनते हैं, और कॉलेज में आकर न जाने क्या क्या लीला करते रहते हैं। संगति, जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आगे भगवान कपिल देव कहेंगे इसके बारे में। तो संग करना चाहिए अच्छे लोगों का। तो मैत्रेय मुनि वेद व्यास जी के सखा थे। और विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय मुनि ने जो उत्तर दिया वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा? कहते हैं, अब आइए मैत्रेय ऋषि के मुख से भगवान कपिल की कथा हम सुनते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि विदुर, पितरी प्रस्थिते रणियम। पितरी भगवान कपिल के पिता प्रस्थिते प्रवेश किए कहां पर? अरण्यम, जंगल में। जंगल में प्रवेश किए। मातु प्रिय चिकित्सया, पिताजी वन में चले गए और ये भगवान कपिल अपने माता की चिकित्सा। प्रणाम, दंडवत, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम जो कार्य में लगे हैं है ना, वो कार्य सफल कब माना जाता है पता है? कभी कभी होता है ना, हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अच्छा है कि बुरा है हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन हमारे कार्य में जब कोई महात्मा का आगमन हो तब समझ लेना चाहिए कि हमारा कार्य सफल है। बहुत अच्छी बात है। तो पिताजी वन में चले गए और भगवान कपिल अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी माता के हित के लिए, तस्मिन बिंदु सरे वात्सित भगवान कपिल किल, भगवान कपिल उस बिंदु सरोवर के तट पर अपनी माँ के साथ रह रहे थे। किल, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, सब लोग जानते हैं। देखिए इस श्लोक में मातु शब्द आया है, दो शब्द, पितरी और मातु। पितरी का अर्थ पिता होता है, मातृ का अर्थ होता है माता। भगवान कपिल अपने माता की सेवा करने के लिए घर पर रहे। भगवान कपिल को विवाह करने की, गृहस्थ जीवन की इच्छा नहीं थी। भगवान कपिल सोचे कि पिताजी तो चले गए हैं, माता बिचारी अकेली है, तो मेरे अलावा संसार में कोई है नहीं, तो घर पर रहे माता की सेवा के लिए। बहुत सुंदर सिद्धांत है, व्यक्ति कितना भी बड़ा भक्त बन जाए परंतु अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भले माता पिता भक्त नहीं है, अभक्त है, परंतु हम भक्तों का कर्तव्य होता है कि हम माता पिता की सेवा करें। देखिए भगवान कपिल पितरी और मातु, इससे भगवान कपिल का मनोभाव आप समझ सकते हैं। भगवान कपिल अपने पिता को पिता समझते थे, माता को माता समझते थे। और आज भक्ति में कोई दो पांच दिन से आ जाता है तो कहते हैं कि तुम मेरे माता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं। आखिर उन्होंने हमको जन्म दिया है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। और माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है उसे निभाना भक्त जानते हैं। केवल माता पिता के चरण दबाने से ही वे सुखी नहीं हो सकते हैं। वास्तव में यदि माता पिता को प्रसन्न करना हो तो भक्ति करनी चाहिए। यदि हम भक्ति करते हैं तो हम भी सुखी हो जाते हैं और माता पिता भी नरक में जाने से बच जाते हैं। तो एक पुत्र को चाहिए अपने माता पिता की सेवा करें। एक बार एक बालक आया हमारे गुरु महाराज के पास, पूछा कैसे हो, अच्छे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं? तो उस लड़के ने कहा आप उनका नाम मत लो। बोले क्यों? बोले हमारे पिता हिरण्यकश्यपु जैसे हैं। बोले क्या हुआ? भक्ति नहीं करने थे। बोले दो महीने से भक्ति क्या करते हो, पिता को हिरण्यकश्यपु बना दिया। समझाइए अपने पिता को, मनाइए, माता पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि माता पिता भक्ति नहीं करते हैं, पाप में लगे हैं, फिर भी यदि वे भक्ति में नहीं है, पापी है, लेकिन फिर भी उस माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकल गया तो वह लड़का जीवन में प्रगति करेगा, सर्वोच्च शिखा पर वह पहुंच जाएगा, शिखर पर। इतिहास में कथा आप सुनते हैं ना, महाभारत में राजा शांतनु के की पत्नी गंगा और गंगा का पुत्र भीष्म देवव्रत, राजा शांतनु गंगा के चले जाने के बाद सत्यवती में आसक्त थे और सत्यवती के घर पर गए उनके माता पिता से उनका हाथ मांगने, तो माता पिता ने ना कह दिया, इसलिए राजा शांतनु बहुत दुखी रहते थे। उनके पुत्र को पता चला कि पिताजी क्यों दुखी हैं। देवव्रत गया और जाकर सत्यवती के माता पिता को कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पिता के साथ क्यों नहीं कराना चाहते? बोले हम चाहते हैं कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने, तुम नहीं। बोले ठीक है, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ले ली। तब सत्यवती के माता पिता ने कहा कि तुमने तो प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन तुम विवाह करोगे, पत्नी के सामने किसी का चलता नहीं है। बोले यदि ऐसा है, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे पिता के हाथ में दे दो, दूसरी प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य। प्रतिज्ञा लेकर सत्यवती को लेकर पिताजी के पास आए। इतिहास में न जाने पहली घटना होगी कि एक पुत्र अपने पिता के लिए लड़की ढूंढने गया है। लेकिन देखिए, जब पुत्र ने ऐसा कार्य किया तो राजा शांतनु के हृदय से आशीर्वाद निकला। वाह बेटा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तेरी इच्छा न हो तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया उस पिता ने, शांतनु ने। अब बताइए, शांतनु कौन से बड़े भक्त थे, कौन से बड़े महात्मा, एक स्त्री में आसक्त थे, है ना? एक स्त्री में आसक्त शांतनु ने आशीर्वाद दे दिया तो पितामह भीष्म को वो आशीर्वाद मिल गया। जब माता पिता अंतर से आशीर्वाद देते हैं तो पुत्र में उसका कल्याण होता है। तो प्रयास करना चाहिए पुत्रों को, माता पिता को सुखी। चैतन्य महाप्रभु ने किया, हम कौन सी खेत की मूली है? चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो माता शची बहुत दुखी हुई, क्योंकि पिता तो थे नहीं, जगन्नाथ मिश्रा तो परधाम सिधार गए थे। तो शची बहुत दुखी हुई। शची ने एक खबर भेजी कि ठीक है, मेरे बेटे ने संन्यास लिया है, कोई बात नहीं, परंतु मेरी एक इच्छा है कि वह जगन्नाथपुरी में रहे, क्योंकि मायापुर से जगन्नाथपुरी बहुत निकट है, कभी मुझे मिलना हो तो मैं आ जाया करूंगा। तो अपनी माता को प्रसन्न रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे। महाप्रभु भी यह कार्य किए, और हम तो महाप्रभु की परंपरा में। तो इस प्रकार पितरी मातु चिकीर्षया, अपने माता पिता की सेवा होनी चाहिए उनके प्रति। तो इस प्रकार भगवान कपिल बिंदु सरोवर के तट पर अपनी मां के साथ रह रहे थे। एक दिन देवहूति को विचार आया कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है। देवहूति एक दिन अपने पुत्र के पास गई। उस समय भगवान कपिल तत्वग्राम अप्रदर्शनम तम आसीनम अकर्माणम। भगवान कपिल के बारे में मैत्र ऋषि कहते हैं तत्व ग्राम अपदर्शनम। भगवान कपिल 25 तत्व के समूह के पारदर्शी विद्वान थे, सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, और तत्व ग्राम, इस शरीर में 25 तत्व है, 25 तत्व को विश्लेषण करके प्रत्येक तत्व के बारे में जानने वाले। आप सब जानते होंगे इस शरीर में, सांख्य शास्त्र में अन्य अध्याय में भगवान कपिल इसका वर्णन करेंगे, परंतु शायद हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। पंच पंच अद्भुतम गृहम, आपको पता होगा श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को 2 मिनट में भक्त बनाया। 2 मिनट में दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया, और जन्म देकर नारायण सरोवर में तपस्या करने भेजा। और दक्ष प्रजापति ने कहा कि देखो, 12-15 वर्ष तक तपस्या करके जल्दी जल्दी आ जाना, मैं आप सब लोगों के लिए लड़की देखकर तैयार रखूंगा, आप सबको विवाह करा दूंगा। 10,000 पुत्र गए नारायण सरोवर में, तपस्या किए, 15-20 साल के बाद वापस आए। नारद मुनि ने देखा कि 10,000 का लौट आ रहा है, एक साथ 10,000 को प्रीचिंग करके। और नारद मुनि इस संसार के बहुत बड़े प्रीचर है, और उसमें भी यूथ प्रीचिंग करना उसमें एक्सपर्ट है। आप देखेंगे नारद मुनि के, प्रहलाद महाराज के गुरु नारद, ध्रुव महाराज के नारद, यूथ प्रीचर। ये 10,000 पुत्र वापस घर पर विवाह करने के लिए जा रहे थे, नारद मुनि रास्ते में ही मिले, बोले कहां जा रहे हो? हम लोग विवाह करेंगे। बोले विवाह करोगे? जानते हो पहले संसार के बारे में? बोले क्या? नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछा, 10 पहेली, पजल, और ये लोग चक्कर में पड़ गए। अरे बाप रे, बहुत सुंदर। ये हमने एक बार एक कथा की थी मुंबई में, केवल 10 पहेली के ऊपर। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न थे, बोले इस संसार का अंतिम बिंदु कौन सा है, कथम राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, बिलम च तत निर्गमम, इस संसार में एक ऐसा बिल है जिसमें व्यक्ति जा तो सकता है परंतु वापस नहीं आ सकता है। आप लोग को उत्तर पता हो तो बोलिएगा। काल चक्रम स्वयं भ्रमिम, एक ऐसा चक्र है जो घूमता रहता है, दुनिया के सब लोग उसे पकड़ ले फिर भी वह रुकता नहीं है। क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है। नदी तो वयतो वाहम, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। नदी तो बहुत देखी है जो एक ही डायरेक्शन में बहती है, लेकिन आप लोगों ने देखा है ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है, विवाह करने चले हो। और उनमें से एक प्रश्न ये भी था, पंच पंच अद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है, जानते हो ऐसा घर, विवाह करने चले हो। इनमें से जिसका विवाह हो गया है उनको भी नहीं पता होगा, जान लेना चाहिए विवाह करने से पहले ये सब बातें। यदि विवाह करने से पहले ये सब बातें जान लिया होता तो विवाह ही नहीं करते। तो खैर मुझे याद आ गया इसलिए कह दिया। पूछा था 25 तत्वों से एक अद्भुत घर बना है, उस घर के बारे में जानते हैं? वह घर और कोई नहीं, हमारा ये शरीर ही है जिसमें 25 तत्व लगे हैं। कौन से आप गिनते रहिए। सबसे पहले इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, 5 हुए। और फिर इस शरीर में 5 उस ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श गंध रूप और स्वाद, 10 हुए। और फिर इस शरीर में 5 कर्मेंद्रिय, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं उसे कर्मेंद्रिय करते हैं, और जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, 10 हो गए। 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय क्या है, मुंह हाथ पैर जनेंद्रिय और गुदा, कितने हुए, 15। और फिर इस शरीर जो है, इस शरीर में 5 पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, कितने हुए, 20। और फिर इस शरीर में कुछ सूक्ष्म तत्व है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना, एक कीबोर्ड माउस प्रिंटर मॉनिटर सीपीयू, ये सब हार्डवेयर है, परंतु सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग इत्यादि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। वैसे शरीर के जो सूक्ष्म स्थूल तत्व है हार्डवेयर, वो तो दिखाई दिया जा रहा है आंख कान नाक, लेकिन 5 इस शरीर में सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जानने वाले जानते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के कितना भी अच्छा कंप्यूटर हो, P4 हो या P5 हो, बिना सॉफ्टवेयर के वो नहीं चलता है। वैसे कितना भी अच्छा इस शरीर में लगा हो परंतु अंदर ये 5 सॉफ्टवेयर न हो नहीं चलेगा। तो 20 तत्व हो गए, और 5 कौन से हैं, कहते हैं मन। ये मन जो है सूक्ष्म है, सॉफ्टवेयर की तरह दिखता नहीं है, वैसे तो ये हाथी से भी मोटा है, मन की उपमा हाथी से देते हैं परंतु दिखता नहीं है। फिर हमारे शरीर में है बुद्धि, फिर हमारे शरीर में कितने तत्व हुए, 20 21 22 हुए। 23वां तत्व है अहंकार, अहंकार जो अपनी पहचान बनाए रखता है। 24वां तत्व है आत्मा, और 25वां तत्व है परमात्मा। ये 24 तत्व आत्मा तक हमारे शरीर में कुछ भी आ जाए फिर भी ये शरीर चल नहीं सकता है जब तक परमात्मा रूपी तत्व हमारे शरीर में ना। परमात्मा जो है जनरेटर के समान है, जब तक परमात्मा आत्मा को करंट नहीं देते हैं तब तक आत्मा शरीर में करंट नहीं दे सकती है और तब तक शरीर चल नहीं सकता। ये कैसे जानते हैं? ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम भगवान ने बनाया है। परमात्मा के द्वारा करंट आत्मा में जाता है, आत्मा करंट पूरे शरीर में। अच्छा, आत्मा पूरे शरीर में करंट कैसे छोड़ती है? यहां तो वायर के द्वारा करंट छोड़ता है ना, इस शरीर में आत्मा ब्लड के द्वारा करंट भेजती है। आप देखिए, शरीर में जहां जहां ब्लड है वहां वहां करंट है। जहां जहां ब्लड है वहां आप मारोगे तो आपको लगेगा, और जिस स्थान पे ब्लड नहीं है वहां आपको नहीं लगेगा। आप बाल को काट दो, कोई दर्द नहीं होगा। नाखून को काट दो, कोई दर्द नहीं, क्योंकि ब्लड वहां करंट नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार ये आत्मा जो है पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा करंट फैलाती है। तो इस प्रकार ये 25 तत्व से, और भागवत में 26वां तत्व भी गिनाते हैं जिसे चित्त कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार का संस्कार, जो भी है 25 या 26 तत्व। परंतु भगवान कपिल ये सभी तत्व ग्राम अप्रदर्शनम पारदर्शी विद्वान थे, ये सब के बारे में जानते थे। देखिए, हम कभी भी किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो ऐसे इसको विश्लेषण करके देखना चाहिए, तब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। परंतु हम ये सब की खिचड़ी बनाकर सबको देखते हैं, यही प्रॉब्लम है। और ऐसे भगवान कपिल, तत्व को जानने वाले भगवान कपिल, तम आसीनम अकर्माणम, अपनी कुटिया में बैठे थे, कैसे अकर्माणम, कर्मों से विरत। अकर्माणम का अर्थ निष्कर्म नहीं होता है। भगवान कपिल कर्मों से मुक्त नहीं हो गए थे। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म करेंगे तो अच्छा और बुरा होगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल, कर्म करना ही नहीं है। परंतु गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक सेकंड भी कर्म किए बिना न रह सके। सांस लेना भी एक कर्म है, कर्म सबको करना पड़ता है। परंतु भगवान कपिल ऐसे कर्म में लगे थे, अकर्म का अर्थ होता है ऐसा कर्म जिस कर्म का कोई बंधन न हो, कर्म बंधन न हो। हम लोग कभी कभी ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसका बंधन होता है। मान लो आज आप जो कर्म कर रहे हैं, आज हमने कोई कार्य कर दिया, परंतु उस कार्य की प्रतिक्रिया भविष्य में होगी, या तो आज ही होगी। मान लो जैसे आप किसी रास्ते में किसी व्यक्ति को आप एक एक, एक क्रिया करो, आप आज एक अनुभव करो कि रास्ते में कोई व्यक्ति खड़ा है अनजान, एक थप्पड़ मारो, प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? वो आपको दो मारेगा। किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया होती है, आप पत्थर को ऊपर फेंको नीचे आता है, कोई भी कार्य की प्रतिक्रिया होती है। वैसे हम जो कर्म करते हैं उस कर्म की कुछ प्रतिक्रिया होती है। यदि अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छी, और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल। तो कर्म जो है, कर्म के बंधन में हम बंधते हैं। ऑलरेडी हम इस संसार में जो दुख भोगत रहे हैं, इस दुख का कारण है पूर्व जन्म के कर्म। पूर्व जन्म में हमने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हम आज दुख भोगत रहे हैं, ये दुख रूपी बंधन में फंसे हैं। नहीं तो विचार करो कि इस संसार में कोई व्यक्ति 12 घंटा हाथ गाड़ी चलाता है और शाम को 200 रुपया कमाता है, और कुछ लोग एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, 2 फोन हो जाते हैं, 2 लाख कमा लेते हैं 12 घंटे काम करने के बाद भी 200 रुपया और 2 फोन में 2 लाख कमा लिए। ये क्या है? ये कर्म का बंधन है। उसका कुछ बुरा कर्म होगा इसलिए कम पैसे, अच्छा कर्म होगा ज्यादा पैसे। हम सब लोग बंधे हैं कर्म में। तो पूर्व के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका बंधन आज हम बंधे हुए हैं, और हम आज ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके कारण हम आगे चलकर वो बंधन बंधेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को अकर्म को विकर्म को जानना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को कोई नहीं जान सकता। कभी कभी लोगों के मन में हो रहा है प्रश्न कि हम जो दुखी है ये दुख पूर्व जन्म के कर्म का दुख है, या कहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये पूर्व जन्म के कर्म का कुछ फल है या नया कार्य कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान सकता है। हम जो आज एक क्रिया कर रहे हैं ये क्रिया पूर्व जन्म का फल है कि कोई नई क्रिया कर रहे हैं जिसका नया बंधन बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये कोई नहीं जान सकता है। इसलिए कर्म ऐसा करना चाहिए जिसका कोई बंधन ही न लगे, और कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे पूर्व के जो बंधन है उस पूर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाए और आगे कोई कर्म बंधन लगे ही नहीं। ऐसा कर्म बंधन क्या है, ऐसा कर्म कौन सा है? कहते हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति एक ऐसा कर्म है जिससे हम पूर्व के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और आगे नया कोई बंधन बनता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म करते हैं, भक्ति रूपी कर्म करते हैं। तो भगवान कपिल तम आसीनम अकर्माणम, भक्ति करने के लिए बैठे थे। स्वसुतम देवहूति आह, देवहूति स्वसुतम अपने पुत्र के पास आई। धातु संस्मरति वच, धातु का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वचन को धातु वच संस्मरति, ब्रह्मा जी के वचन को याद करके देवी देवहूति अपने स्वसुतम के पास आई। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने एक बार देवहूति को कहा था कि देवहूति तुम्हारा पुत्र मधु और कैटेव को मारने वाला होगा, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे और तुम्हें ज्ञान देंगे। तो देवहूति आई अपने पुत्र के पास और देवहूति आह और आकर कुछ कहने लगी। आइए देवहूति अपने पुत्र को क्या कहती है। निर्विण्णा नितराम भूमन सत इंद्रिय तर्षणाम, हे भूमन, बेटा भूमन शब्द जो है आदरणीय है। देवहूति अब अपने पुत्र को पुत्र नहीं मान रही है, अब गुरु समझ रही है। जो भी है उम्र से तो कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान और भक्ति से व्यक्ति बड़ा होता है। देवहूति आई दोनों हाथ जोड़कर कहती है भूमन, हे प्रभो, दो संबोधन दे रही है प्रभो और भूमन। हे भगवान, हे प्रभो, हे भूमन, असत इंद्रिय तर्षणात्, असत इंद्रिया ये दुष्ट इंद्रियों के कारण तर्षणात् ये विषय भोग की लालसा दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण निर्विण्णा नितराम मैं बहुत दुखी हूं। देखिए एक एक शब्द के ऊपर मनन करने लायक है। कहते हैं असत इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिया है असत है। असत माने अनित्य, और इंद्रिय क्या करती है? निर्विण्णा नितराम बहुत दुख देती है। वास्तव में दुख देने वाला यह शरीर ही है। शरीर अविद्या जाल, यह शरीर ही अविद्या का जाल है। और उसमें भी जो इंद्रिया है जड़ इंद्रिय ताहे काल, ये इंद्रिया काल के समान है। शरीर ही दुख का कारण है। इस संसार में दुख क्या है? शरीर। यदि यह शरीर न होता तो हम भगवान के धाम में बैठे होते, क्योंकि भगवान के धाम में ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में हम हमारे वास्तविक रूप में रहते हैं। एक बार एक राजा बहुत बीमार हो गए, बहुत वैद्य आए इलाज किए, परंतु राजा का रोग दूर नहीं हुआ। एक बहुत बड़े महात्मा आए उस राज्य में, राजा की नाड़ी को देखे और देख के इसे तो कुछ नहीं है। मंत्री को कहा कि राजा का रोग तुरंत ठीक हो सकता है, बस एक सुखी व्यक्ति का कुर्ता राजा को पहनाना होगा। कुर्ता जानते हैं ना, एक कुर्ता। आपके राज्य में कोई सुखी व्यक्ति का कुर्ता आप राजा को पहना दो, तुरंत ठीक हो जाएंगे। मंत्री ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मंत्री ने पूरे सैन्य को चारों दिशा में भेज दिया, जाओ और जल्दी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लेकर आओ, सुखी आदमी का कुर्ता। तो राजा के सिपाही गए और सबको पूछते थे, भाई आप सुखी हो? बोले हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन बट लेकिन सबको आ जाता था, कोई सुखी नहीं मिला। सब लोग वापस आए, मंत्री को कहा कि देखो कोई सुखी नहीं मिल रहा है। मंत्री ने कहा हमारे राज्य में इतने लाखों लोग हैं, कोई सुखी नहीं मिले? कोई नहीं। मंत्री ने कहा मैं खुद जाऊंगा। मंत्री खुद घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे थे हमारे महाराष्ट्र में, मछली का धंधा करने वाले बहुत सारे होते हैं। और एक व्यक्ति उस नाव पर खड़ा था और नाव पर खड़े खड़े वो जो होते ना रुमाल पहनते हैं, रुमाल पहनकर अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे करके गाना गा रहा था। मंत्री को लगा कि ये सुखी है। मंत्री घोड़े से उतरा और कहा कि ए भाई साहब आप सुखी हो? बोला हाँ बिल्कुल सुखी, कोई टेंशन ही नहीं है। बोले वास्तव में? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, आपका कुर्ता मुझे दे दो, राजा को पहनाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं, इस संसार में जितने कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। जितने कुर्ते वाले सब लोग दुखी। तात्पर्य ये है, कुर्ता और कोई नहीं, कुर्ता जो है ये हमारा शरीर है, राजा जो है हम हैं। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे, सुखी हो नहीं सकते। शरीर अविद्या का जाल है, परंतु इस शरीर को रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारी इंद्रियों को पवित्र करना है तो दो कार्य करना होगा। एक कार्य है भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाकर हम हमारे शरीर को पवित्र कर सकते हैं। गाते भी है ना प्रसाद लेते समय, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासु न एव जाए। ये महाभारत का श्लोक है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं, प्रभुपाद जी ने रख दिया है। चार प्रकार के लोगों का विश्वास, महाप्रसाद, जो दुष्ट है उनका विश्वास चार चीज के ऊपर नहीं होता है, महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, गोविंद में और ब्राह्मणों में। और फिर कहते हैं शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है, दुखों का आगार है। और उसमें भी जड़ इंद्रिया ताहे काल, उसमें भी इंद्रिया जो है काल के समान, और उसमें भी तार मध्य जिह्वा, और उसमें जो ये जिह्वा है अति लोभमय, इतनी लोभी है, इतनी लोभी है, लोभमय सुदूरमती, इति उति होती रहती है ना, जिह्वा रे लालसा इति उति धाय। जब मुझे दीक्षा लेनी थी तो दीक्षा के समय मुझे प्रश्न पूछा गया कि जिह्वा का वेग किसे कहते हैं, तो मैंने कहा जिह्वा रे लालसा इति उति धाय, जिह्वा कभी इति उति। बोले इति उति का अर्थ क्या होता है? इति उति का अर्थ, इति माने कभी पानी पूरी, भेलपूरी, पाव भाजी, पिज्जा, सैंडविच, जिह्वा की लालसा इति उति होती रहती है। शिष्णोदर पारायण कृष्ण नाही पाए, जिसने जिह्वा को वश में नहीं किया वह कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। परंतु कृष्ण बहुत दयामय है, कृष्ण बड़ो दयामय, करीवारे जिह्वा जय, कृष्ण बहुत कृपालु है। और जिह्वा को वश में करने के लिए देखिए जीवा यदि वश में हो गई तो उदर वश में हो जाएगा, उदर वश में हो गया तो जनेन्द्रिया वश में हो जाएगी, और ये तीन वश में हो गया तो सब कुछ वश में हो जाएगा। इसलिए जीवा को वश में करना बहुत जरूरी है। कृष्ण बड़ो दयामयी करी वारे जीवा जय, जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करने, जीवा को वश में करने के लिए महाप्रसाद दिलो भाई। हे भाइयों, कृष्ण ने अपना महाप्रसाद दिया है, सही अन्नामृत खाओ। भगवान ने जो महाप्रसाद दिया है अमृत के समान, इसे पाते रहो और राधा कृष्ण के गुण गाते रहो। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद प्राप्त करके हम हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, और दूसरा भगवान का नाम लेकर हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। खैर, देवहूति आई और अपने पुत्र को कहती हैं कि बेटा, ये जड़ इंद्रियों के कारण असत इंद्रिय तर्षणात्, तर्ष का अर्थ होता है प्यास, और तर्षणात् का अर्थ होता है विषयी भोग भोगने की लालसा। देवती क्या कहती है कि विषयी भोग भोगने की लालसा दिन भर दिन बढ़ रही है। यह देवती नहीं, ये हमारा प्रश्न है कि विषय भोग की लालसा, विषय किसे कहते हैं? ये हमारी पांच इंद्रिया जो है, आंख कान नाक जीवा त्वचा। आंख के लिए, आंख का विषय है दृश्य, आंख जो है देखना चाहती है, और हमारी इंद्रिया इतनी बिगड़ गई है कि आंख बुरा दृश्य देखना चाहती है, फिल्म देखना चाहती है। कान जो है सुनना चाहते हैं फिल्म के गाने। त्वचा जो है स्पर्श करना चाहती है, जीभ खाना चाहती है, और नाक सूंघना चाहता है। ये सब विषय, ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचे जा रही हैं। जैसे प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं, एक एक, एक पति हो और उसकी 10 पत्नी हो, और वो पति जब घर पर आए तो 10 पत्नी कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई यहां खींचे, कोई वहां खींचे, 10 पत्नी 10 दिशा में खींच कर लेकर जाए। वैसे ये भौतिक विषय भोग, ये इंद्रिय विषय भोग भोगने की लालसा हमें खींच रही है, वही दुखी कर रही है। ये विषय भोग वास्तव में हमें दुखी कर रहा है, और व्यक्ति मान बैठा है कि ये भोग भोगने से ही हम सुखी होंगे, क्योंकि संसार में इतना अज्ञान है, और रात दिन एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इतना अज्ञान भरा जाता है कि ये शैंपू यदि आप इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं हो पाओगे, बस ऐसा दिखाना चाहते हैं। और उसमें भी ये लोग अब समझ गए हैं कि संसार के सब लोग स्त्रियों के पीछे आ सकते हैं, इसलिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा तो स्त्री को खड़ा रखेंगे, छोटे छोटे कपड़े पहना कर, आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करो नहीं तो आप दुखी हो जाओगे। तो इस प्रकार सबके आंख और कान से यही भरा जा रहा है, तो सब लोग मान बैठे हैं कि बस ये सब भौतिक दृश्य भोग भोगने में ही सुख है। परंतु भौतिक भोग कितना भी भोगा जाए, व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को इस संसार के सभी सारे भोग दिए जाए, माने इस संसार के जितने भी थिएटर हैं उनके नाम पर कर दिया जाए, इस संसार की जितनी होटल हैं उनके नाम पर कर दी जाए, इस संसार में जितनी बैंक हैं, रिजर्व बैंक है, सब उनके नाम पर कर दिया जाए, और फिर उसे पूछा जाए, और इस संसार में जितनी अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं सबको उसके साथ विवाह करा दिया जाए, ये बाकी रह गया था, और फिर उसे पूछा जाए कि अब आप सुखी हो गए, पूरा जीवन वह सबका भोग भोगेगा, अच्छे से अच्छे खाएगा, अच्छे से अच्छा देखेगा, अपनी दृष्टि से अच्छे से अच्छी स्त्री का भोग करेगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सुख भोगने के भोग हैं ये इंद्रियों के लिए हैं, और तत्व की बात यह है कि हम इंद्रिया नहीं, हम तो आत्मा है, हम आत्मा है, और सुखी करते हैं शरीर को और सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, सुखी हो गए, कैसे होंगे? यदि आत्मा को सुखी करना है तो आत्मा के लिए कुछ कीजिए। हम लोग शरीर के लिए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे एक पिंजरा हो, पिंजरे में तोता बंद हो, तोता यदि रो रहा हो तो पिंजरे का मालिक सोचे कि ये बेचारा लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, इसको चांदी के पिंजरे में रखना है। उस तोते को निकालकर चांदी के पिंजरे में रख दिया, फिर भी तोता यदि रोता रहा तो सोचता है कि नहीं नहीं, सोने के पिंजरे में रखना चाहिए, 24 कैरेट सोने का पिंजरा बनवाया, उसमें तोते को रखा, लेकिन फिर भी रोता रहा। फिर उसे नहीं नहीं, इसमें हीरे जेवरात लगाकर यदि तोते को रखेंगे तब सुखी हो जाएगा। उस हीरे जेवरात से बने हुए पिंजरे में तोते को रखा, लेकिन फिर भी तोता रोते रहा। अब देखिए, बाहर से कितना भी पिंजरा बदलते रहो, जब तक तोते को भोजन नहीं दोगे तब तक तोता सुखी नहीं होगा। वैसे बाहर से कितना भी शरीर को सुखी करने के लिए प्रयास करो, जब तक आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, और आत्मा के लिए कुछ न करते हुए हम मात्र इंद्रियों के विषय भोग भोगते जा रहे हैं, और इंद्रियों के कितने भी विषय, इंद्रियों को कितना भी विषय दिया जाए। आज आपने ये सोनी एरिक्सन लेकर दिया तो एक साल के बाद नहीं नहीं नोकिया का नया पीस आया है, ये नया 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 आते रहे। व्यक्ति सोचता है, ठान लेता है कि बस, कि अब होंडा सिविक यदि मेरे पास आ जाए तो बस अब हो गया सर। होंडा सिविक आ भी जाती है भगवान की कृपा से कार, लेकिन 2-3 महीने के बाद सोचता है कि नहीं, अब तो SX4 आ गई है, अब नई कार लेनी होगी। तो वो उसके लिए परिश्रम करता है, वो लेता है तो कुछ नहीं आते रहता है। कपड़े लेने जाता है तो सोचता है बस अच्छे से अच्छे कपड़े ले लूंगा, लेकिन 2 महीने के बाद दूसरे अच्छे कपड़े लेना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि संसार के जितने भी विषय हैं सब अपूर्ण है, संसार के विषय भोग अपूर्ण है, और इंद्रिया भी अपूर्ण है। ये अपूर्ण अपूर्ण कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते, इसका कभी एंड नहीं आ सकता। तो मानो देवते ने कहा कि मेरे विषय भोग भोगने की लालसा बढ़ती जा रही है। तो मानो भगवान कपिल देव ने कहा तो भोग लो विषय। संसार के कुछ लोग है ना, कहते देखो अपने मन को दुखी मत करो, मन में जो भी इच्छा है सब पूर्ण कर दो। हम कभी कभी एकादशी उपवास निर्जला करते हैं, आत्मा को तड़पा रहे हो, आत्मा को मत तड़पाओ। भगवान दुखी होते हैं अंदर बैठने वाला, ये मूर्ख लोग मूर्खता करते रहते हैं। अब तो अपना समाज बैठा है इसलिए कह दूं कि संसार में एक ऐसा संप्रदाय कि देखो मन में जो भी इच्छा होती है भोग भोगने की, भोग लो पहले, जो भी भोग है भोग लो। जब मैं 15-20 साल पहले, मेरे पास भी ऐसे लोग आए थे, और अमेरिका में इसका प्रचार जोर शोर से चल रहा है, भारत में कहते हैं कि यदि किसी लड़की के साथ भोग भोगने की इच्छा हो रही है ठीक है भोग लो। वो लड़की भी उस संप्रदाय में, लड़का भी, और दोनों भोग भोगते हैं विवाह के पहले। इसलिए उस संप्रदाय में हजारों लोग रजनी सोशो, यही सिद्धांत है उसका, भोग लो इच्छा पूर्ण करो। परंतु ये मूर्ख लोग जानते नहीं है कि भोगों को भोगने से भोगने की लालसा कम नहीं होती है, बढ़ती है। भोगान भोगता वैमेव भोगता। हमारे इतिहास में एक संत हुए जिसका नाम था भर्तहरि, हमारे गुजरात के। पहले तो बहुत बड़े राजा थे और अपनी पत्नी के पूर्ण पत्नी में आसक्त थे, परंतु उसे वैराग्य हुआ। आइए कथा सुना देता हूं, महाराष्ट्र के भक्त की तो सुनते ही रहते हैं, गुजरात के भक्त की सुन। राजा भर्तहरि 1800 गांव के राजा थे, उसके अंडर में 1800 गांव थे। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, एक बार किसी संत ने उस राजा भर्तहरि को अमर फल दिया। कहा, राजन ये फल खा लो तुम अमर हो जाओगे। भर्तहरि उस अमर फल को लेकर घर पर आए, सोचे मैं अमर फल को खाकर क्या करूंगा, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी को बुलाया, रानी को बुलाया, अमर फल दे दिया कि तुम ये अमर फल खा। और दुर्भाग्य की बात, भर्तहरि की पत्नी भर्तहरि से प्रेम नहीं करती थी, वह किसी घोड़े की रखवाली करने वाले से प्रेम करती थी। रात को 2 बजे वह फल लेकर घोड़े की रखवाली करने के पास गई। कहा, देखो मेरे पति ने अमर फल दिया है, लेकिन मैं खाकर क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, जब तक जीवित हूं तब तक तुम्हें देखना चाहती हूं, ये फल तुम खा लो। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, वो घोड़ा वाला उस रानी से प्रेम नहीं करता था, वो किसी वेश्या से प्रेम करता था। रात को 3 बजे वो अमर फल लेकर वेश्या के पास गया। बोले, देखो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मेरे पास अमर फल आया है, ये अमर फल तुम खा लो। वेश्या को दे दिया। अब वेश्या ने सोचा, ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगी, राजा को यदि बेच दूं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन वो वेश्या राजा के पास आई और राजा को कहा, देखो मेरे पास एक अमर फल है, खाने से तुम अमर हो जाओगे, लेकिन 5 लाख रुपया चाहिए। बोले, 5 नहीं 10 दूंगा, अमर फल लाओ। वेश्या ने अमर फल दिया, राजा ने सोचा तो मैंने मेरी पत्नी को दिया था, वेश्या के पास कैसे पहुंचा। राजा ने पूरी इंक्वायरी की, तब पता चला, अरे बाप रे, मैं दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं वो किसी और से प्रेम करती हूं। उसी समय वैराग्य हो गया और लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सबको छोड़कर लाल कपड़े पहनकर वह राजा भर्तहरि निकल गए जंगल में और उन्होंने वैराग्य शतक नामक एक ग्रंथ लिखा और उसमें अपना अनुभव लिखा। भोगान भोगता वैमेव भोगता, अरे मैं सोच रहा था कि मैं भोग को भोग रहा हूं, परंतु मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, मैंने भोग को नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग लिया। लोग सोचते हैं ना कि मैं शराब पी रहा हूं, परंतु हम क्या शराब को पिएंगे, शराब हमको पी जा रही है। हम सिगरेट पी रहे हैं, अरे सिगरेट हमको पी रही है। तपसान तपता वही मैं वो तपता। इस प्रकार से भोग भोगने से उनको भोगने की लालसा कम नहीं होती, बढ़ती है। भागवत में 2 बार दृष्टांत आया है, ये भोग भोगने की जो लालसा है आग के समान है। काम जो है दुष्पूर्णेन अनल च, गीता में भगवान कहते हैं ये काम जो है अग्नि के समान है। आप विचार कीजिए, कहीं पर अग्नि जल रही है और अग्नि में आप घी डालोगे तो क्या अग्नि शांत हो जाएगी? तो वैसे ही ये भोगों की लालसा अग्नि के समान है और आप उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे तो और बढ़ेगी। होता क्या है, अग्नि जल रही है और उसमें आप सहसा बहुत सारा घी डाल दिया तो कुछ मिनट के लिए वह शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो जो अग्नि थी उसे 10 गुना और बढ़ जाती है। वैसे भोग भोगने की जब इच्छा होती है और उसे भोगते हैं तो कुछ समय तक वह शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर 10 गुना और इच्छा बढ़ती है। तब कहती है देवी देवहूति, येन संभाव्य माने न प्रपन्ना अंधम तम प्रभो। ये विषय भोग भोगने से व्यक्ति तमह में प्रवेश हो जाता है, तमह को प्राप्त होता है, अंधम तमह। इसलिए अब मैं ये विषय भोग की लालसा से ऊब चुके हूं, थक चुके हूं, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे दुख को दूर कीजिए। तस्यम त्वम तमसोंधस्य दुष्पारद्य पारगम सच्चक्षु जन्म नामन्ते लब्धम मे त्वद अनुग्रहात्। प्रभु त्वद अनुग्रहात्, आपकी कृपा से मैं इस विषयी भोग की लालसा से मुक्त हो सकती हूं। देखिए बहुत सुंदर, मुझे तत्कालिक एक बात याद आ रही है। देवती कह रही हैं कि त्वत अनुग्रहात, विषय भोग भोगने की लालसा से यदि मुक्त होना है तो उसे मात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। भागवत के नवम स्कंध में पुरुरवा महाराज की कथा आपने सुना होगा। उर्वशी के पीछे इतना मोहित हो गए, इतना मोहित है, बहुत बहुत वर्षों तक भोग भोगने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ। और जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने एक गीत गाया, भागवत में वो गीत है, ऐल गीत होता है ना, जब कोई मजनू बन जाता है तब गाना गाने लगता है। इसे वैराग्य हुआ तब एक गीत गाया, अद्भुत गीत है। और उस गीत में सबसे पहला संबोधन, ओ हो अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया। बहुत लंबा गीत है लेकिन उस गीत की एक बात मुझे याद आ रही है कि इस संसार में जो व्यक्ति ही इस संसार की किसी स्त्री में या भौतिक वस्तु में आसक्त हो जाता है तो सबसे पहले वह आसक्ति जो है कहां से शुरू होती है देख लेना चाहिए। शुरू होती है आंख से। व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है, चाहे मोबाइल हो या कपड़े हो या गाड़ी हो या बंगला हो या कोई स्त्री हो, हम स्त्री को ही लेते हैं, आप उसमें सब कुछ समझ लेना। मान लो कोई लड़का किसी स्त्री को देखता है आंखों के सामने, बस स्टॉप के ऊपर खड़ा है और आंखों से देखता है, एक दिन देखा, दूसरे दिन वही बस स्टॉप के ऊपर, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर वह आंखों से देखकर वहां से हटा दिया तो कोई बात नहीं, फिर आंखों से वह स्त्री जो है बुद्धि में जाती है, सॉरी मन में चली जाती है, फिर वह घर पर जाता है तभी वह बस स्टॉप याद आता है, सुबह स्नान करने जाता है तो ये आज मिलेगी। मन से यदि उसे रोक दे तो कोई बात नहीं, फिर मन से बुद्धि में चली जाती है, निर्णय करने लगता है कि अब उसके साथ विवाह करूंगा, विवाह करूंगा। फिर एक दिन बस स्टॉप के ऊपर प्रपोज कर ही देता है कि देखो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। लड़की सोचती है मैं भी यही सोच रही थी। जायते विषयान पुंस संगस्ते शूप जायते, संगस्ते जायते काम कामात क्रोधो भी जायते। फिर उसके साथ वह घूमता है, पहले तो मात्र मित्रता होती है, कोई काम भावना नहीं होती है, बस ऐसे ही जस्ट फ्रेंडशिप कहते हैं, जस्ट फ्रेंडशिप, और कुछ आगे कुछ नहीं है। लेकिन धीरे 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 उसे देखते देखते उसके साथ बातचीत करते करते अब तो फोन के बिल भी बढ़ते जाते हैं और न जाने कितनी बात करते हैं। मैं जहां पर रहता हूं मुंबई में बोरीवली में, तो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा जोगर्स पार्क है और बाजू में ही कॉलेज है, कॉलेज में बंक मार के सब लड़के लड़के आकर बैठ जाते हैं, सुबह से बैठते हैं शाम तक, न कुछ खाना पीना। मैं रोज देखता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं तो देखते रहता हूं। एक बार तो मैंने सोचा टाइम क्या वेस्ट करना, ये कैमरा मेरे पास था तो मैंने स्टैंड पर उसे लगा दिया उस लड़के लड़की के ऊपर। रात को जब देखा तो ये पूरा दिन बैठे थे, न खाना न पीना। ऐसी कौन सी बात न जाने होती रहती उन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ बात करना, देखते देखते बात करते करते, फिर आंखों से मन में, मन से बुद्धि में, फिर वह लड़की जो है बुद्धि से हृदय में उतर जाती है। तुम्हारे बिना दो तीन गाने भी गा लेते हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, खा नहीं सकता हूं, पी नहीं सकता हूं। और फिर घर पर पता चलता है कि ये तो अलग कास्ट के हैं, माता पिता ना कह देते हैं तुम्हें भी विवाह नहीं करना है। मैं आपको एक सत्य घटना कह रहा हूं। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और हमारे 9th स्टैंडर्ड में एक लड़का था जिसका नाम समीर था और एक लड़की थी जिसका नाम कविता। देखिए सत्य घटना मेरे आंखों के सामने घटी हुई। ये कविता जो थी पढ़ने में इतनी एक्सपर्ट थी, हमारा होमवर्क चेक करती थी, मॉनिटर बनाया था टीचर ने, क्या पता ये दोनों के बीच में चक्कर हो गया। पिकनिक में गए हम लोग वाटर पार्क तो वहां भी ये लोग साथ में घूमते थे। इस प्रकार करते करते दोनों अलग अलग कास्ट के थे, माता पिता ने ना कह दिया। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और 10वीं कक्षा में आए दसवीं कक्षा में भी ये दोनों साथ में रहे, फिर दसवीं के बाद तो आप सब जानते हो महाराष्ट्र बोर्ड सब कॉलेज में चले जाते हैं। इलेवेंथ में मैं कॉलेज में चले गया, कॉलेज में छह महीने के बाद एक बार मैंने टीवी शुरू किया, अद्भुत चौंका देने वाली घटना टीवी में मैंने देखी। टीवी में मैंने कभी देखा नहीं था कि टीवी में आया कि वे कविता फांसी के ऊपर लटकी हुई थी इन मुंबई न्यूज में। अरे मैंने कहा तो ये तो नाइन्थ में मेरे स्टैंड में मेरा होमवर्क चेक कर रही थी, और जो समीर था उसके ऊपर किसी ट्रक चढ़ गया था, और वो संवाददाता वे कह रहे थे कि लड़की के पिताजी ने वो समीर का आइडेंटिटी लेकर जा रहा था और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दिया और ये लड़की को पता चल गया तो फांसी के ऊपर चढ़ गई। दोनों घटना मेरे सामने घटी। कामात क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। देखिए मृत्यु आ गई, आत्महत्या कर ली। परंतु मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, ये कहानी शुरू कहां से हुई थी? आंख से, देखने से। देखिए ये संसार के दृश्य कहां से कहां पहुंचा देते हैं। यदि उस बस स्टॉप के ऊपर देखा ही न होता, अपनी दृष्टि घुमा ली होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये भोग जो है इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो जब कोई आसक्ति आंखों में आ जाती है तो हम हमारी शक्ति से निकाल सकते हैं, आंखों से मन में चली जाती है तब भी हम निकाल सकते हैं, मन से बुद्धि में चली जाती है तो गुरुजन प्रयास करके उसे निकाल सकते हैं, परंतु जब भौतिक संसार की आसक्ति हृदय तक पहुंच जाती है तब संसार का कोई गुरु, संसार की कोई ताकत उस हृदय में पहुंची हुई विषय भोग की आसक्ति से मुक्त नहीं करा सकती। उस विषय भोग की आसक्ति से मुक्त एकमात्र भगवान ही करा सकते, और उस बात को यहां पर कह रही हैं त्वत अनुग्रहात। हे प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मैं इस आसक्ति से मुक्त हो सकती हूं, आपकी कृपा से ही अब मेरी जन्म परंपरा का पुनरपि जन्मम, पुनः पुनः जन्म लेने की परंपरा का अंत हो सकता है। तब मानो भगवान कपिल कहे माता जी मैं तो आपका पुत्र हूं, छोटा सा बालक हूं, आप मेरी इतनी महानता क्यों बता रही हैं, मैं तो आपका लड़का हूं। तब नौवें श्लोक में देवहूति कहती है नहीं नहीं आद्यो भगवान, तुम छोटे से बालक, तुम पुत्र नहीं हो, तुम तो इस संसार के आदि भगवान हो, तुम तो मेरे भी आदि हो। लीला की दृष्टि से तुम मेरे पुत्र हो परंतु तत्व की दृष्टि से आदि, आदि अनादि भगवान जो है सबके आदि है। तुम आदि हो, तुम भगवान हो, पुंसाम ईश्वर हो, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके ईश्वर हो, वही भगवान किल किल। ये बात सब लोग जानते हैं, केवल मैं ही नहीं। लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदित, और मैं यह भी जानती हूं प्राय इस संसार में सब लोग तमस अंधस्य, इस संसार में तमस का अर्थ होता है अज्ञान, और अज्ञान की उपमा अंधकार के साथ दे रहे हैं। प्राय इस संसार में सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार से दुखी हैं, परंतु प्रभु आप संसार के लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए आए हो, मैं जानती हूं। वास्तव में अज्ञान ही दुख का कारण है। मान लो रात के 10 बजे प्रवचन हो रहा हो इस पंडाल में और अचानक सब लाइट चली जाए और यहां से एक सांप लटक गया हो तो सब लोग हाहाकार करने लगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, यहां गिरेंगे, कुछ वहां गिरेंगे, कीचड़ में फंसेंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद लाइट आ जाए और पता चले तो रस्सी लटक रही है। तो देखिए कि सब लोग भागे, दौड़े, गिरे, टेंशन लिए, चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि अंधकार था। जैसे ही प्रकाश हुआ तो ज्ञान हो गया, क्या सत्य क्या गलत। वास्तव में अंधकार ही दुख का कारण बना, वैसे इस संसार में अज्ञान ही दुख का कारण बनता है। जैसे व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह सुखी हो जाता है। तो यह अज्ञान जो है अंधकार के समान है। और प्रभु चक्षु सूर्य इवोदित, और आप सूर्य के समान, भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य के समान। प्रभु आप जहां पर प्रकट हो जाते हो वहां अंधकार रह नहीं सकता। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, माया जो है अज्ञान अंधकार के समान और कृष्ण सूर्य के समान है। और जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार, जहां कृष्ण प्रकट हो जाते हैं वहां माया रहती नहीं है। इसलिए प्रभु आप इस संसार में सूर्य के समान आए हो हमारा अज्ञान दूर करने के लिए। कृपया करके आप हमारा ज्ञान दूर कीजिए। अथ मे देव सम्मोहम अप्रकष्टुम त्वम अरहसी। हे देव, मेरे इस देह में और मेरे घर में मैं और मेरा करते करते जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है वह अज्ञान आप ही के द्वारा, त्वम अरहसी, आप ही के द्वारा उत्पन्न हुआ है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इस संसार में जो भी अज्ञान है यह अज्ञान किसके द्वारा मिला है? आपके द्वारा। मानो भगवान कपिल ने कहा कि मैं आपका अज्ञान कैसे दूर कर सकता हूं, तो देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, अहम मम इति अवग्रह। इस संसार में अहम मम, मैं और मेरा, ये जो अज्ञान की भावना है त्वया योजित, आपके द्वारा ही तो उत्पन्न हुई है। गीता में भी भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये अर्जुन, ये जो माया जो है मम, मेरी शक्ति है, दुरत्य उसे है समझना और उसे पार करना बहुत मुश्किल है। सम्मोहम अपाकृष्टम त्वम अरहसी। देवती कहती हैं कि यह माया शक्ति प्रभु आपकी है, आपके कारण ही, आपकी माया से ही तो हम मोहित हुए। और यदि आप चाहो तो इस माया से हमें मुक्त करा सकते हो। प्रभु आप हमें इस माया से मुक्त कराइए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरमतीते। जो कृष्ण की शरण में चला जाता है वही संसार की माया से मुक्त हो जाता है। त्वं त्वाम गताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आई हूं। शरण्यं, वास्तव में इस संसार में शरण ग्रहण करने योग्य एकमात्र आप हो। शरण्यं अर्थात शरणागत वत्सल। आपकी शरण न लेकर मैं किसकी शरण में जाऊं? शरण्यम, शरण्यम का अर्थ होता है शरण ग्रहण करने योग्य। इस संसार में आपको शरणागत होना है, किसी की शरण ग्रहण करनी है तो कृष्ण की कीजिए, राम की कीजिए। इसके अलावा किसी की भी शरण में जाओगे आप लॉस में रहोगे, फायदा नहीं होगा। जैसे रावण शिव जी की शरण में गया था और शिव जी की शरण में जाने के लिए अपने दसों मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाला, तब शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर क्या दिया, रावण को सोने की लंका प्रदान की। रावण शिव जी के पास गया, दस मस्तक काटे, इतना तपस्या यज्ञ करने के बाद रावण को शिव जी ने सोने की लंका दी। और रावण का भाई विभीषण, न मस्तक काटा, न तपस्या, न यज्ञ, कुछ नहीं, केवल राम के पास जाकर एक दंडवत प्रणाम लगा दिया। भगवान राम के मुख से निकल गया, लंकेश आपका स्वागत। राम के मुख से लंकेश क्या निकला, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जो लंका रावण को दस मस्तक काटकर मिली थी वह लंका विभीषण को मात्र राम को प्रणाम करने से मिल गई। बताइए इससे बड़े शरण देने वाले कौन है? रामायण में वर्णन है, जामवन जी ने पूछा, प्रभु आप बड़ी बड़ी बात करने लगे, अब तो युद्ध भी नहीं हुआ है, रावण का सामना भी नहीं किया है, यदि रावण ने आपको हरा दिया तो? बोले कोई बात नहीं, यदि मैं लंका नहीं जीत सका तो इस विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, परंतु राजा अवश्य बनाऊंगा। ये है भगवान की शरण। बताइए ऐसी शरण को छोड़कर किसके पास जाओगे? वास्तव में आप शरण्यम हो, स्वभूत्यम संसार तरो कुठारम। आप अपने भक्तों के लिए ये संसार जो है एक वृक्ष के समान है। वृक्ष, और वो भी कैसा वृक्ष जो 500,000 वर्ष तक, पता ना वृक्ष में कितना कष्ट होता है, ठंडी गर्मी। संसार वृक्ष के तरह समान है, और आप अपने भक्तों के लिए संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठारम फरसू के समान हो। आप अपने भक्तों का संसार काट देते हो और अपने धाम में बुला लेते हो। अहम प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासया। मानो भगवान कपिल पूछे, ठीक है ये सब आप कह रही हो, लेकिन आप क्या जानना चाहती हो? तब देवती कहती है, अहम, मैं प्रकृते पुरुषस्य, मैं प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में जिज्ञासया जानना चाहती हूं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। अर्थात इस संसार में जड़ पदार्थ, जीव, भगवान का रूप स्वरूप, सबके गुण क्या है ये बताइए। तो इस प्रकार सत धर्म विदाम वरिष्ठम, आप सत धर्म को जानने वाले में वरिष्ठ हो। सत धर्म के बारे में बताइए, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताइए। इस प्रकार देवहूति ने जिज्ञासा की। मैत्र ऋषि कहते हैं, इति सोमातु निर्वध्य मिप्सितम निशम्य पुंसाम पवर्ग वर्धनम धिया विनन्या दभवत भवताम सताम गति पवार्ष ईसत समशोभितानन। अपनी मां के मुख से ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए। पता है ना, संसार में बालक देखता है कि मां भक्ति कर रही है तो बालक प्रसन्न रहता है। भगवान कपिल प्रसन्न हुए कि माता की आसक्ति भौतिक भोगों से छूट रही है। और माता की इच्छा कैसी थी, निर्वध्यम पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। देवहूति की जिज्ञासा अपवर्ग वर्धनम, अपवर्ग की प्राप्ति कराने वाली। अपवर्ग का अर्थ जानते हैं, बहुत बहुत व्याख्या है। अब इस प्रकार व्याख्या करता रहा तो आधा अध्याय भी नहीं होगा, इसलिए मैं अब छोड़ रहा हूं सब वर्ग। आप संस्कृत व्याकरण कभी पढ़े हो तो उसमें वर्ग होता है, क वर्ग। क वर्ग का अर्थ क ख ग ग ग, च वर्ग माने च छ ज ज ज, ट वर्ग माने ट ठ ड ड, इसे वर्ग कहते हैं। तो प वर्ग का अर्थ होता है प फ ब भ और म। इस भौतिक संसार को पवर्ग कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में पांच वस्तु हैं। पहला है प, प का अर्थ होता है परिश्रम। सब लोग परिश्रम कर रहे हैं रात दिन, इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि मुख से फेंड निकल जाते हैं, इसलिए फ। दूसरा, और परिश्रम कर करके धन कमाते हैं, और धन कमा के कहते हैं ये मेरा धन, ये मेरी ऑफिस, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, मेरा, बकरी की तरह मैं करते रहते हैं, इसलिए ब, प फ और ब। और फिर ये सब कुछ मेरा हो जाने के बाद फिर सोचते हैं कि ये मेरा कोई लेकर चला ना जाए, भय उत्पन्न होता है, इसलिए भ। और भयभीत होते होते एक दिन आ ही जाती है मृत्यु, इसलिए म। यही है संसार, भौतिक संसार। तो संसार में प फ ब भ म है, इसलिए इसे पवर्ग कहा जाता है। परंतु देवहूति की जिज्ञासा कैसी थी? देवहूति की जिज्ञासा का उत्तर यदि कोई सुनता है तो इस पवर्ग से बिल्कुल उल्टा अपवर्ग है। अपवर्ग माने भगवान का धाम। पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, देवहूति की जिज्ञासा अपवर्ग भगवान का धाम प्राप्त कराने वाली है। इसका श्रुतिफल यदि कोई देवहूति का या भगवान कपिल देव का उपदेश सुनता है तो निश्चित रूप से उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो अपनी मां की जिज्ञासा सुनकर ईशित स्मित शोभित आनन, मुख पर प्रसन्नता, स्मित, यहां पर एक शब्द आया है स्मित, भगवान कपिल ने स्मित किया। स्मित माने देखिए कई प्रकार की हंसी होती है, हंसना भी बहुत प्रकार का। बिना दांत दिखाए हंसते हैं उसे स्मित कहते हैं, जरा करके दिखाओ। बिना दांत दिखाए हंसे उसे स्मित कहते हैं, और दांत दिखाकर जो हंसते हैं उसे हंसना कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का हंसना राक्षस हंसना, हा 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 हा। तो स्मित भगवान कपिल देव ने स्मित किया, मंद मंद मुस्कुराए और स्मित करके बभाषे बोलने लगे। देखिए हम प्रचारकों के लिए बहुत सुंदर बात आ रही है, बभाषे का अर्थ होता है प्रवचन शुरू किया। भगवान कपिल देव इतने बड़े सांख्य शास्त्र के ज्ञाता प्रणेता और तत्व के पारदर्शी विद्वान प्रवचन करना शुरू कर रहे हैं, और श्रोता कितने बैठे हैं? एक। इतने बड़े वक्ता एक श्रोता के सामने प्रवचन कर रहे हैं। देखिए प्रवचन करते समय कितने बैठे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे बैठे हैं यह महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी कोई मान्य नहीं रखती है, परंतु एक चलेगा, परंतु परीक्षित होना चाहिए, देवहूति या शौनक होना चाहिए। तो इस प्रकार एक प्रचारक को चाहिए कि भले कम श्रोता हो या एक ही श्रोता हो, और एक श्रोता ना हो तो दीवार को उपदेश सुनाना, लेकिन सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार देवहूति की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर अब 13वें श्लोक से भगवान उपदेश प्रारंभ करेंगे। समय हो चुका है, श्री भगवान उवाच, तो भगवान क्या बोलते हैं हम कल से शुरू करेंगे। आप सब भक्तों का निवेदन है कल से भगवान के मुख से, श्री मुख से यह शिक्षा प्रारंभ होगी, तो आप सब आइए। और अब 2 दिन ही बचा है ना, अब 2 दिन इस शिक्षा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।